एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम आपके होस्ट, मैं हूं सागर
और मैं हूं चर्चल।
और लास्ट वीक हमने हमारे लिसनर्स के यानी कि आपके कुछ क्वेश्चंस उठाए थे और उनको आंसर किया था विद ईच क्वेश्चन टेकिंग ओनली 5 मिनट्स। उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए वी हैव पिक मोर क्वेश्चंस फ्रॉम यू जो हमें इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप और हमारे यूट्यूब कमेंट्स में मिले एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस देम विद 5 मिनट्स गिवन टू ईच क्वेश्चन सो दैट हम हर क्वेश्चन पे इक्वल टाइम दे पाए एंड उसके साथ जस्टिस कर पाए।
बट आज के इन क्वेश्चंस के एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स को बोलना चाहूँगा कि गुड टॉक पॉडकास्ट में मेरी और सागर की कोशिश रहती है टू हेल्प स्प्रेड पॉजिटिविटी। और इस पॉजिटिविटी, ग्रोथ और हैप्पीनेस की जर्नी में अगर आप हमारा पार्ट बनना चाहते हैं तो मेक श्योर कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हमें सुनते हैं उस पर हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी क्वेश्चंस, कमेंट, फीडबैक्स या सजेशंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन 888-9460-888। हमें इंस्टाग्राम मैसेज भी कर सकते हैं या यूट्यूब कमेंट्स में उन्हें मेंशन कर सकते हैं। एंड विद दैट लेट्स बिगिन टुडेज एपिसोड।
सो द फॉर्मेट इज गोइंग टू बी रियली सिंपल। हम एक क्वेश्चन पिक करेंगे, 5 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट करेंगे और उस पर बात करना स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट?
ओके
ओके। सो सुनीता, सिंड्रेला, प्राची, अनमोल एंड ब्लॉसम वॉन्ट टू नो कि हाउ दे कैन बी अ मोर पॉजिटिव पर्सन, कैसे वो ज़्यादा जॉयफुल हो सकते हैं। और ये जॉयफुल वर्ड बहुत लोगों ने बहुत बार यूज़ किया है। एंड हाउ कैन दे बी हैप्पी इन एनी टाइप ऑफ सिचुएशन।
आई थिंक सागर, अगेन इसका रिप्लाई वो एक क्लीशेड रिप्लाई का जो ऑलमोस्ट हर एपिसोड में मैं मैंशन करता हूँ, ग्रैटिट्यूड। एंड क्लीशेज एक रीज़न की वजह से होते हैं, बिकॉज दे वर्क। एंड ग्रैटिट्यूड इज़ समथिंग विच वर्क्स। अगर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ग्रैटिट्यूड का एटीट्यूड लेके आएंगे, आप एक ऐसा एटीट्यूड लेके आएंगे जहाँ पे आपके पास जो है उसके लिए आप खुश होना चालू करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली जॉय बहुत बढ़ गया है। हम मोस्टली खुशी को डिफर करते रहते हैं अपने आसपास से, जॉय को डिफर करते रहते हैं कि जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, जब हम ये कर लेंगे, जब हमें ये मिलेगा, तब हम एक्चुअली खुश होंगे। और जब आप इस एटीट्यूड के साथ चलते हैं तो वो चीज़ आपको मिल भी जाती है तो वो आपको खुशी नहीं दे पाती, वो आपको जॉय नहीं दे पाती, वो आपको हैप्पीनेस नहीं दे पाती है। सो अपनी लाइफ में ज़्यादा जॉय, ज़्यादा हैप्पीनेस लाने के लिए सबसे पहला तरीका जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड लेके आइए अपने अंदर। ग्रैटिट्यूड को कॉन्शियस प्रैक्टिस बनाइए और लाइफ में उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए।
और हमें लगता है कि हम एक्चुअली बहुत ग्रेटफुल है और हाँ, हमें अपनी लाइफ में जो भी मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, बट हम एक्चुअली ग्रेटफुल होते नहीं हैं। अगर आप ये चीज़ टेस्ट करना चाहते हैं तो अपने आप को मिरर में देखिए एंड ट्राई टू सी कि आप अपनी बॉडी के बारे में क्या फील करते हैं। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छी बातें तो आपके माइंड में नहीं आएंगी, बट उसके इम्परफेक्शन आपको तकलीफ देंगे, आपको अपने बाल पसंद नहीं आएंगे, अपनी आँखों से दिक्कत होगी, अपने नाक से दिक्कत होगी, अपनी टमी से दिक्कत होगी, लेग से दिक्कत होगी, सिर्फ दिक्कतें होंगी। कहीं भी आपको ये थॉट नहीं आएगा कि कितनी अच्छी बात है कि आई एम एक्चुअली अलाइव एंड दिस बॉडी इज़ माई होम। कितनी अच्छी बात है कि ये रोज़ सुबह सही समय पर उठती है, जो मैं चाहता हूँ वो कर देती है एंड उसके बाद अच्छे से मुझे रेस्ट भी दिला देती है एंड सो ऑन। हमारे पास ये थॉट्स क्यों नहीं आते? क्योंकि हम कभी भी कॉन्शियसली ग्रेटफुल होने की कोशिश नहीं करते और इसलिए हमारी हैप्पीनेस, हमारी जॉय कम होता जाता है, बिकॉज वी आर डिलेइंग दैट जॉय, वी आर डिलेइंग दैट हैप्पीनेस। जैसा कि आपने कहा कि हम ये कुछ कर लेंगे उसके बाद हमें शायद खुशी मिलेगी। एंड जैसे जिम कैरी कहते हैं कि ही वॉन्ट्स पीपल टू बी रियली सक्सेसफुल जस्ट टू फाइंड आउट कि वो उसका आंसर नहीं है। आपको खुश पहले होना पड़ता है और लाइफ में अच्छी चीज़ें उसके बाद होती हैं।
एंड सागर, जब आप ये बॉडी की बात कर रहे थे तो अ लॉट ऑफ पीपल कैन थिंक के हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, सबके पास एक शरीर होता है। नहीं, सबके पास नहीं होता है, यही बड़ी बात है। आपके पास एक फुल्ली फंक्शनल बॉडी है। बहुत से लोगों के पास वो फुल्ली फंक्शनल बॉडी नहीं होती है एंड दैट इज़ अ रीज़न टू बी हैप्पी। क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी मिली है सो यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट, यू कैन बी हैप्पी अबाउट थिंग्स जो आपकी लाइफ में है, आपके पेरेंट्स, आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं। ऑब्वियसली यू कैन ट्राई एंड वॉन्ट मोर, आप चाह सकते हैं कि आपके पास बेटर हो, बट दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम बींग ग्रेटफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव। एक और चीज़ जो मुझे लगता है अपनी लाइफ में ज़्यादा जॉय इन्वाइट करने के, लोग ये कर सकते हैं कि यू हैव टू ऑब्जर्व एंड नोट डाउन थिंग्स जो आपकी लाइफ में अच्छी होती हैं। तो होता क्या है कि कोई एक इवेंट आपकी लाइफ में होगा जो बहुत अच्छा होगा, आप 5 मिनट के लिए हैप्पी हो जाएंगे और फिर वो इवेंट खत्म हो जाएगा। अगर आप एक लाइफ ऑफ जॉय चाहते हैं, कॉन्स्टेंट एनर्जी ऑफ हैप्पीनेस चाहते हैं, तो आपको उन इवेंट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और देन नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं और सागर हैप्पीनेस जर्नल बनाते हैं उस सेम चीज़ को नोट डाउन करने के लिए। आप भी सम फॉर्मेट ऑफ जर्नलिंग कर सकते हैं, मोबाइल पे, डिजिटल वेज में या हैंड रिटन नोटबुक्स में, उन चीज़ों को, उन अच्छे मोमेंट्स को, उन कॉम्प्लीमेंट्स को, उस एक अच्छी लाफ्टर को नोट कर सकते हैं। और जब आपके पास एक बहुत ही बड़ा बुक होती है, बहुत सारे इवेंट्स का कंपाइलेशन होता है, तो आप नोटिस करते हैं कि कभी भी आपको जॉय ढूंढने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है। जब भी आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, उस जर्नल को उठाइए, पढ़िए और यू विल सी कि आपकी लाइफ में कितना कुछ, कितना अच्छा है।
और हम जॉय के बारे में सोच भी तब रहे होते हैं जब हम अनहैप्पी होते हैं। अगर आप नोटिस करना शुरू करें कि जब आप जॉयफुल होते हैं, जब आप हैप्पी होते हैं, तब आप क्या कर रहे थे, तो आपको पता पड़ता है कि बाद में रिक्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ता हूँ, जब भी मैं किसी नए प्लानट के बारे में पढ़ता हूँ या सैटेलाइट के बारे में पढ़ता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिकली बहुत खुशी होती है। तो व्हेनेवर आई एम हैप्पी, मैं इस बारे में पढ़ रहा होता हूँ। या फिर जब भी मैं किसी नए म्यूजिकल आर्टिस्ट को सुनता हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज आई फील कि मैं अभी भी विद द टाइम्स चल रहा हूँ और नई नई चीज़ें करता रहता हूँ। जब आपको लो फील होता है, आप इसी चीज़ को रिवर्स में यूज़ कर पाओगे। आपको जैसे ही पता पड़ता है कि आपको लो लग रहा है, आप अपनी इस लिस्ट में से चीज़ें पिक कर सकते हो कि यार मेरे को डॉग वीडियोस देख के हमेशा ही खुशी अच्छा होती है। सो इमीडिएटली यू कैन गो, एंड द ओनली टाइम आई वुड रिकमेंड कि आप फेसबुक पे जाओ, इज़ कि आप जब लो फील कर रहे हो, गो फॉर दोज डॉग वीडियोज, सी 4-5 क्यूट पपीज, और आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। देन ऑफकोर्स क्लोज इट डाउन एंड गो बैक टू व्हाट यू नीडेड टू डू। पर आप ये ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो तभी जब आपको पता हो कि आपको एक्चुअली खुश क्या करता है लाइफ में।
एंड सागर, मुझे लगता है कि हैप्पीनेस छोटे मोमेंट्स पे ही होती है। आप नोटिस करेंगे कि जब भी किसी इंसान से पूछा जाता है कि व्हाट वुड यू लाइक टू डू मोर, इट इज़ ऑलवेज फन एंड प्ले। तो वो फन एंड प्ले होता क्या है? वो फन एंड प्ले होता है कि आपने बारिश में कभी डांस किया हो, जब आप एक साइकिलिंग ट्रिप पे गए हों, जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हों। सो ट्राई एंड आइडेंटिफाई दो स्मॉल मोमेंट्स एंड लिव देम मोर।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके,
सो हृदय वॉन्ट्स टू नो हाउ कैन आई स्टेप आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन टू द ग्रोथ जोन, द क्वेश्चन अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेसिकली।
बेसिकली मुझे लगता है कि जो भी इंसान इस चीज़ से स्ट्रगल करता है, वो स्ट्रगल कर रहा है एक्चुअली स्टार्टिंग से। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए, स्टार्ट विथ एनी थिंग। हम लोग रुके रहते हैं कि कुछ परफेक्ट मिलेगा, हम उस पर सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट विथ एनी थिंग, डू एनी थिंग। अगर एक पॉइंट पर आप हैं, पिक एनी बुक जो आपको सामने दिख रही है। डोंट वेट कि मुझे बेस्ट बुक मिलेगी तब मैं पढ़ना चालू करूँगा, बहुत अच्छी बुक मिलेगी। लोग करते हैं कि जब वो रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो 5,000 लोगों से पूछेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। नहीं, अगर आप रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पिक एनी बुक जो आपके सामने है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, भले ही वो नॉवल हो, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, कुछ भी हो, स्टार्ट रीडिंग। जब आप बीच प्रोसेस में पढ़ रहे हो तब आप ढूंढने का काम कर सकते हैं। जब हम ग्रोथ जर्नी पे जाने की बात करते हैं तो हम लोग डिले उसको इस तरह से करते आते हैं कि हम रिसर्च में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, और अगर आपको एक्चुअली ग्रोथ करनी है तो वो एक्शन से ही आएगी। सो स्टार्ट विथ एनीथिंग, जो भी आपको सामने दिखता है वो करना चालू कर दीजिए। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है और आपको जिम मेंबरशिप लेने में 2 दिन लगेंगे क्योंकि आज सैटरडे है, तो स्टार्ट रनिंग टुडे। घर पे पुशअप्स लगाने की कोशिश कीजिए, बट डू एनीथिंग एंड स्टार्ट विथ एनीथिंग।
कितनी बड़ी बात है कि जस्ट स्टार्ट योर जर्नी, क्योंकि काम टालने का सबसे आसान तरीका होता है काम के बारे में रिसर्च करते रहने का। विद गूगल एंड एवरीथिंग जो हमारे पास है, हम रिसर्च इतनी सारी कर लेते हैं कि देयर कम्स अ पॉइंट जब हम एक्शन लेने के केपेबल ही नहीं रहते, कि हमारे माइंड में इतने सारे परफेक्ट सिनेरियोज रहते हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू अ रिलेटेड पॉइंट ऑल्सो, कि स्टॉप लिविंग इन एक्सट्रीम्स। अगर आप किसी एक चीज़ में बहुत ही बुरे हैं तो उसको अपने कम्फर्ट में लाने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज यू आर गोना फेल मिजरेबली। जिस चीज़ में आप बहुत कम अच्छे हैं, लेट्स से लोगों से बात करने में, तो आप एक ही दिन में एपिक नहीं होने वाले हैं उस चीज़ में। ट्राई टू बिल्ड ऑन योर स्ट्रेंथ। अगर आप किसी एक चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, लेट्स से यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, तो उस एरिया में थोड़ा आगे बढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा वर्सेज स्टार्टिंग समथिंग ब्रांड न्यू। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी भी लाइफ में कोई नई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे, बट उस चीज़ को करने के लिए आपको जो करेज लगेगी, जो दम लगेगा, जो सेल्फ बिलीफ लगेगी, वो आपको पहले बिल्ड करनी पड़ेगी। सो इन योर कम्फर्ट जोन आप ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है, और उसमें थोड़ा बेटर होने की कोशिश करते हैं तो आपको और अच्छा लगेगा। इसको लिविंग ऑन द एज भी कहते हैं, कि आपका कम्फर्ट जोन का सर्कल जहाँ भी खत्म होता है, आपका एक पैर उसके थोड़ा सा बाहर जाता है, ताकि आपको थोड़ा सा डर लगे, थोड़ा सा मज़ा आए और आप आगे बढ़ सकें।
एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप लर्निंग के बारे में सीख सकते हैं। लर्न टू लर्न बेटर वेज, ज़्यादा इफेक्टिवली लर्न कैसे किया जा सकता है, इस बारे में कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमने एक पूरा पॉडकास्ट एपिसोड किया था इस बारे में, हम उसकी लिंक नीचे शेयर कर देंगे, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब आप ग्रोथ जर्नी पे जाना चाहते हैं तो आपको कई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पर अगर आपको वो चीज़ें जल्दी सीखना आती है, ज़्यादा इफेक्टिवली सीखना आती है, तो आप उन्हें बहुत जल्दी सीख पाएंगे, बहुत जल्दी ग्रो कर पाएंगे। सो दैट इज़ अनदर टिप जो आप यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, इज बींग ओके विथ फीलिंग। जब भी हम कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो हमें सबसे पहला डर जो लगता है वो ये होता है कि हम फेल हो जाएंगे, और इसलिए हम कुछ करने से बच जाते हैं, हम अपने कम्फर्ट बबल में रहने की कोशिश करते हैं। एंड ये आइडेंटिफाई करना और रिकोगनाइज करना कि इट्स ओके टू फेल, मैं फेल हो जाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लाइफ गोज ऑन, मुझे कई और मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, और मेरे फेलियर पर हो सकता है लोग थोड़ा सा हंस लें, मेरा मजाक बना ले, मेरी सेल्फ इमेज थोड़ी सी शेक होगी, बट इट इज़ नॉट फीलिंग दैट काउंट्स, इट्स द करेज टू टेक एक्शन दैट काउंट्स. एक शायरी भी है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले. तो वो इंसान कभी फेल नहीं हो सकता जो कुछ कर ही नहीं रहा है. अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप फेल हो रहे हैं, मीन्स कि आपने कुछ किया है जो वर्दी था और इसलिए आप फेल हुए. और जितनी ज़्यादा बार आप फेल होते हैं, यू इफेक्टिवली लर्न कि कैसे बेटर बना जा सकता है, कैसे कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से की जा सकती है.
कॉन्स्टेंट एक्सपेरिमेंटेशन, दैट्स द की. आप जब भी कोई चीज़ पिक करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे रेजोनेट करे, वेदर इट्स अ वर्कआउट रूटीन, वेदर इट्स अ स्टडी रूटीन, वेदर इट इज़ एनी थिंग एट ऑल. आप जो भी चीज़ पिक करोगे ये सोचिए कि यार ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको अच्छा लगता जाए और वो आपको उतना मज़ा दे जितना आपको लगा था वो आपको मज़ा देगा. बट अगर आप कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगली चीज़ पिक कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बारे में नई चीज़ें जान पाते हैं, अपना रेजिलियंस बिल्ड कर पाते हैं, जिससे कि आप किसी चीज़ पर टिके रह सके और लाइफ में आगे बढ़ पाते.
एक फाइनल टिप जो मैं दे सकता हूँ इस अरीना में, वो ये है कि जब भी आप अपना कंफर्ट जोन एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं, तो अपनी मॉर्निंग को एक अच्छी स्टार्ट देने की कोशिश कीजिए. अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो आपका डे का स्टार्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए. अगर आपका डे का स्टार्ट अच्छा है, अगर आपने दिन के स्टार्ट में 2-3 सक्सेस ले ली है, तो अब ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोमेंटम आ गया आपकी लाइफ में. आप उस मोमेंटम को यूज कर सकते हैं थ्रू आउट द डे आगे बहुत सारी चीजें करने के लिए और आगे बढ़ सकते हैं.
एंड वी आर नॉट सेइंग कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, इवन दो वी हाईली रिकमेंड, अगर आप वो कर सकते हो तो वो आपको करना चाहिए, बिकॉज दैट विल हैव अ ह्यूज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ. बट नो मैटर व्हेन यू स्टार्ट योर डे, स्टार्ट इट राइट. सो विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एक्चुअली, और मोटिवेशन एंड कोर्स लवर एंड पल्लवी वॉन्ट टू नो हाउ दे कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग, हाउ दे कैन स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स एंड स्टॉप बींग अ डे ड्रीमर, या फिर अपने आप को एंग्जाइटी देना वो बंद कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें, वो जो करना चाहते हैं उस पर फोकस कर सकें.
आई थिंक मैं सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा जिन भी लोगों ने इसको क्वेश्चन को सबमिट किया है, बेसिकली बिकॉज दे हैव द अवेयरनेस कि वो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की. कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि हम ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, और हम करते ही जाते हैं ओवर थिंक, और हम सोचते हैं कि हमारा माइंड लूप्स में चल रहा है और कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में. सो अवेयरनेस इज़ द कीवर्ड. आपको अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी कि दिस इज समथिंग यू आर स्ट्रगलिंग विद, एंड ये एक प्रॉब्लम है जो क्योर की जा सकती है. वंस यू हैव दैट अवेयरनेस, तो अब आपको पैटर्न ब्रेकर्स ढूंढने हैं. बेसिकली पैटर्न ब्रेकर्स आर दोज थिंग्स जो आपके उस थिंकिंग की प्रोसेस के पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं. इट कुड बी कि आप चीज़ें अरेंज करने की कोशिश करते हैं, इट कुड बी फिजिकल वर्कआउट जो आप करने की कोशिश करते हैं, इट कुड बी कि आप एक क्विक शावर ले लेते हैं ताकि आपके वो सोचने की जो लूप्स चल रहे हैं वो रुक जाए. बट आइडेंटिफाई सम पैटर्न ब्रेकर्स जो आपके इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को क्योर कर सके.
एक सिंपल सी माइंड ट्रिक जो मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, वो है कि ओवर थिंकिंग को ओवर थिंकिंग बोलने की जगह आई स्टार्ट कॉलिंग इट थिंकिंग. I'm thinking about this. हम जितनी बार इस चीज़ को रिपीट करते हैं अपने माइंड में, उतनी बार आपको समझ में आएगा कि जो ओवर वर्ड है वो आपको उतना पावरफुल नहीं लगेगा, अपने आप वो हट जाएगा और आप सिर्फ सोच रहे होंगे ऑटोमेटिकली. एंड इसके साथ साथ जो थॉट्स की पावर है वो कम होने लगेगी, आपको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल महसूस होगा. एंड मेक श्योर कि जब आप थिंक कर भी रहे हैं, तो दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम टेकिंग एक्शन, दैट शुड नॉट स्टॉप यू इन योर ट्रैक्स. हम जब भी सोच रहे होते हैं तो हम बिस्तर में बैठ जाते हैं, सोफे में एक तरफ सर नीचे करके सोचने लगते हैं, सो ऑन. इंस्टेड गेट अप, स्ट्रेट होके बैठ जाइए, खड़े हो जाइए, जहाँ आप बैठे हुए वहाँ से उठ के कहीं और ले जाइए. इतना सा सिंपल फिजिकल चेंज भी आपके माइंड को एक स्टॉप पॉइंट देता है कि अच्छा ये तो कहीं और आ गए, यहाँ पर उस तरह से सोचना पॉसिबल नहीं.
एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक जर्नल मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी आप ओवरथिंक करते हैं आप लिखें उस बारे में कि मैंने बहुत ओवरथिंक किया था, बट एक्चुअली में कॉन्सिक्वेंसेज में या रिजल्ट्स कुछ ऐसे निकले नहीं थे. और उस जर्नल में हर बार जब आप ओवरथिंक करते हैं तो एंट्री दें. जब आप नोटिस करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आप ओवरथिंकिंग करें, तो आपके पास एक पास्ट रेफरेंस बुक है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतनी बार मैंने ओवरथिंक किया था बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं निकला और उससे कुछ होता नहीं है. तो दिस गिव यू अ कॉन्शियस मोमेंट टू थिंक कि यार पिछली बार भी इतना सोचा था एंड कुछ होता जाता है नहीं. सो अब कॉन्शियसली इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए. बर्ने ब्राउन एक और अच्छी टिप सजेस्ट करती है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, बेसिकली वो शेम के रेफरेंस में बोलती हैं कि जब भी उनको शेम लगता है तो वो वर्ड यूज़ करती है शेम 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 शेम. तो जब भी आप ओवर थिंक कर रहे हैं तो आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं थिंक 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 थिंक. जब आप इस तरह से बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने माइंड में इस चीज़ को रिपीट करते हैं, तो आपका माइंड लूप से बाहर निकल जाता है. आपका जो ब्रेन अभी बैक ऑफ दी उस पे रहता है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आ जाता है, और अब आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको पैटर्न ब्रेक करना है या क्या करना है. सो दैट इज़ वन वेरी गुड टिप जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने इस ओवर थिंकिंग के लूप को तोड़ने के लिए, एंड वहाँ से फिर आगे बढ़ना आपके लिए काफ़ी आसान हो सकता है.
एंड फाइनली चर्च आई थिंक स्टार्ट आस्किंग वाई. अगर आप सेम चीज़ों के बारे में बहुत बार रिपीटेडली सोचते हैं, स्टार्ट आस्किंग क्यों ऐसा होता है, वाई आर यू थिंकिंग सो मच अबाउट दिस. एंड जितना आप ये अपने आप से बार बार पूछते जाएंगे, आपको समझ में आएगी कुछ चीज़ें आपके लिए सच में मैटर करती हैं. हो सकता है ये आपके पेरेंट्स हो और उनका अप्रूवल हो सकता है ये आपके फ्रेंड्स हो और उनके बीच में अच्छा पाया जाना ज़रूरी हो सकता है वो आपके लाइफ की कोई और एरिया हो जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप उस बारे में बहुत ज़्यादा रिपीटेडली सोच रहे हैं तो कोई ना कोई डीपर सीटेड रीज़न होगा. अगर आप वो रीज़न आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आप सोचना बंद करेंगे और उस रीज़न पे काम करना स्टार्ट कर देंगे, उसको लेट गो करना स्टार्ट कर देंगे या उस एरिया में बेटर होना शुरू कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली यू विल हैव मोर कंट्रोल.
बेसिकली वरी का एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं होता है अनलेस यू कैन आइडेंटिफाई द रियल कॉज जो आपको बॉदर कर रहा है. यू कैन नॉट फिक्स द वरी. तो वरी फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या चीज़ मुझे परेशान कर रही है. एंड वंस यू हैव दैट नॉलेज, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट इट, यू शुड स्टार्ट टेकिंग सम एक्शन जिससे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं.
सरफेस लेवल से आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा नीचे सोचना है, क्योंकि हम जब ओवरथिंक कर भी रहे होते हैं हम एक मेन थॉट को लेके चल रहे होते हैं और उसको भी एक्सट्रीम्स में सोचते हैं. हम ये नहीं सोचते कि थोड़ा बहुत बुरा होगा, हम उसके भी एक्सट्रीम सिचुएशंस बनाते हैं कि बुरा नहीं होगा, इतना सारा बुरा हो जाएगा कि मैं लाइफ में वापस नहीं आ पाऊंगा उस चीज़ से. ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, सिर्फ सर्फेस पे सोचने की वजह से होता है. तो जब आप लिखते हैं, राइट डाउन करते हैं या नोट डाउन करते हैं, तो वंस यू रिटन इट डाउन आप उसके अंदर के और रीजंस निकाल सकते हैं. कॉन्स्टेंटली अपने आपको वाई पूछते रहिए और ऑटोमेटिकली आपके रियल रीजंस बाहर आने लगेंगे जिस पे आप एक्चुअली काम कर सकते हैं.
एंड रॉकेट साइंस में तो कहा भी यही जाता है कि देयर आर सम थिंग्स यू कैन कंट्रोल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल. सो बेसिकली आपका गोल होना चाहिए उन चीजों पे फोकस करने का जो आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड बाकी चीजों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए एंड प्रोबेबली दैट शुड हेल्प यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरथिंकिंग.
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम पूर्वा. शी वांट्स टू नो कि हाउ नॉट टू बी पॉजिटिव अबाउट योर पार्टनर.
आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, हर जेंडर से, मेल्स और फीमेल्स दोनों इस चीज़ से स्ट्रगल करते हैं कि वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं अपने पार्टनर से और वो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इंटर्न जब सामने वाला रिबेल करता है तो देन देर आर आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स एंड थिंग्स. एंड मुझे लगता है कि आप अगर रेत को बहुत तेज़ी से दबाने की कोशिश करेंगे मुट्ठी में तो आप उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे. जितना तेज़ आप अपनी फिस्ट को क्लोज करने की कोशिश करते हैं रेत उतना बहती जाती है उसमें से. सो ये आइडेंटिफाई करना कि किसी इंसान को आप सिर्फ पॉजिटिव होकर अपने पास रोक लेंगे ये पॉसिबल नहीं है. आप जितना ज़्यादा किसी को बांधने की कोशिश करते हैं वो उतना कोशिश करता है कि वो बाहर निकल पाए उस बंधन से और वो उतना फ्री आउट होने की कोशिश करता है. बेटर तरीका ये है कि आप उसे ओपन स्पेस दीजिए और अगर वो सच में आपका होगा, जो कहने में बहुत ही क्लीशेड लगता है बट एक्चुअली ट्रू है, अगर वो एक्चुअली आपको वर्थ करता होगा, आपको वैल्यू करता होगा, आपकी कंपनी इंजॉय करता होगा तो दे वुड स्टे.
आई थिंक वी आर सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग वॉट वी हैव कि हम हर कोशिश करते हैं उसको अपने पास रखने की. ये जब चीज़ों के साथ होता है तो बहुत आसान होता है बिकॉज हम होल्ड कर सकते हैं, किसी चीज़ को उठा के अलमारी में डाल सकते हैं, हम अपने बचपन के कपड़े तक अलमारी में उठा के डाल देते हैं बिकॉज वी हैव सम यू नो मेमोरी विथ इट, वी डोंट वांट टू लूज इट एंड सो ऑन. पर अनफॉर्चुनेटली ये जब हम किसी पर्सन के साथ करने लग जाते हैं तो वो पर्सन बहुत कंट्रोल्ड फील करता है. और ये आपके साथ भी हुआ होगा जब आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि तुम ये कर सकते हो और ये नहीं कर सकते हो. व्हाट इज़ द थॉट यू हैव कि एक बार मेरी जॉब तो लग जान दो, जब मैं अपनी मनमर्जी से रहूंगा या रहूंगी तो मैं कुछ भी जो करूंगी चाहूंगा वो कर लूंगा. सो यही चीज रिलेशनशिप्स में भी होती है कि आपका जो भी करंट स्पेशल समवन है, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आपका लाइफ पार्टनर होगा, यू डोंट नो हाउ लाइफ इज गोइंग टू टर्न आउट. जो भी आपका स्पेशल समवन है आप जितना पॉजिटिव उसके तरफ होगे उतना वो कंट्रोल फील करेगा और भागने की कोशिश करेगा एंड दिस इज नॉट द टाइप ऑफ फीलिंग यू वॉन्ट इन रिलेशनशिप.
बेसिकली ये फीलिंग आप अपने खुद के लिए भी नहीं चाहते. अगर कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता, बताता कि आप ये कर सकते हैं ये नहीं कर सकते हैं, आपको खुद को भी अच्छा नहीं लगता. एंड जब रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो पहले तो ये बहुत केयर के फॉर्म में आता है, बट देन जब आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ बबल अप होने लग जाती है तब ये नेगेटिव या विशियस फॉर्म में आने लग जाता है. एंड यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. जो भी इंसान बहुत पॉजिटिव होता है उसको कहीं ना कहीं लगता है कि वो थोड़ा सा कमतर है एंड उसको ये मिल गया है पर आगे कुछ नहीं मिलने वाला है.
राइट.
ऑल्सो उसको ये भी लग सकता है कि दूसरे लोग मुझसे बेटर है और वो इसको मुझसे चुरा लेंगे. एंड ये दोनों ही बहुत ही नेगेटिव प्लेसेस है रहने के लिए.
राइट.
इन इनसिक्योरिटीज़ को हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन इनसिक्योरिटीज़ के बबल में रहेंगे तो कभी भी आप सेल्फ कंटेंड या सेल्फ वर्थ से नहीं भरे हो सकते. प्रॉबेबली आपको अपने आप पर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए थी कि मैं अपने आप को इतना अच्छा बना लूँगा या मैं अपने आप को इतनी अच्छी बना लूँगी कि सामने वाला अब मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो गया तो ये उसका लॉस है. कई बार हमें रिलेशनशिप में ये भी लग सकता है कि मैंने इतना किया और फिर सामने वाला छोड़ के चला गया, बट अगर किसी रिलेशनशिप में आपने अपना 100% दिया है तो लॉस आपका नहीं है क्योंकि सामने वाले ने कम दिया था और अब आप कम लूज कर रहे हैं, बट आपने अपना 100% दिया था जो कोई और मैच नहीं कर सकता। तो हो सकता है वो घूमने भटकने कुछ देर जा सकता है, बट एक्चुअली अगर वो आपको वैल्यू करेगा तो वापस आ जाएगा। और ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी सेल्फ वर्थ पे वर्क करेंगे, अपने आप को कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करने पे वर्क करेंगे। सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग समवन, उतनी एनर्जी किसी को कंट्रोल करने में खर्च करने के लिए कि हम उसके बिहेवियर को कंट्रोल करें, उसको बार बार रोके टोके, अपने ऊपर वर्क करने की कोशिश कीजिए और बार बार अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश कीजिए। आप जिस लेवल की इंग्लिश बोलते हैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आप जितना अच्छा पढ़ते हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आप अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, अपने पॉस्चर को, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। नेट भरा हुआ है चीज़ों से जिनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। आप बेटर तरीके से एक्सप्रेस करना सीख सकते हैं, आप ज़्यादा अच्छी तरीके से लिखना सीख सकते हैं, और जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जाएंगे सामने वाले को नॉवल्टी मिलती जाएगी, उसको बेटर चीज़ें मिलती जाएंगी, एंड वो देखेगा कि आप एक ग्रोथ के पाथ पे चल रहे हैं। एंड किसी भी बढ़ते हुए इंसान को कोई खोना नहीं चाहता है। जो इंसान थम गया है, पीछे रुक गया है, उससे सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पर जो इंसान आगे जा रहा है लोग उसके साथ चलना चाहते हैं। तो अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को साइड में रख के अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब आपके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा और पॉजिटिव होने की फीलिंग आप छोड़ पाएंगे।
बेसिकली आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, नो मैटर कि आप वो कैसे करते हैं। इट कुड मीन वर्किंग आउट, इट कुड मीन रीडिंग, इट कुड मीन कम्युनिकेशन, इट कुड मीन एनीथिंग। आपको सिर्फ अपना बेस्ट वर्जन बनना है, ताकि दोनों में से एक चीज़ होगी, या तो सामने वाला आपको खोना नहीं चाहेगा और आपके साथ रहेगा, या दे विल बी टू स्केर्ड ऑफ योर ग्रोथ एंड दे विल लीव यू, मेकिंग स्पेस फॉर समवन
जो वर्दी है,
अप्रिशिएट करता है और जो आपके लिए एक्चुअली सही है। तो दोनों में से जो भी आउटकम आता है वो आपके लिए अच्छा होगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें कुछ ना कुछ ट्रस्ट इन्वॉल्व होता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप इनफ हैं, यू आर इनफ, एंड पीपल डू वॉन्ट टू स्टे विथ यू। इफ दे डू नॉट वॉन्ट टू स्टे विथ यू तो ये उनका अपना चॉइस है। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को ग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बना रहे हैं, एंड ऑटोमेटिकली द पीपल हु नीड टू बी इन योर लाइफ विल ऑलवेज बी इन योर लाइफ। विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आर यू रेडी?
या
सो KV5030 वॉन्ट्स टू नो हाउ टू सी थिंग्स एज दे आर। और ये यूट्यूब पे भी मुझे क्वेश्चन मिला था, सो आई रियली वॉन्टेड टू इंक्लूड दिस कि हाउ यू कैन see things as exactly they are and move on from them easily।
इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैं बेसिकली इसका कंटेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से था। हमने इंस्टाग्राम पे एक आस्क मी एनीथिंग सेगमेंट किया था, जहाँ पे किसी इंसान ने पूछा था कि हाउ कैन वी मेक आर लाइव्स मोर मीनिंगफुल। उस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त मैंने बताया था कि अपनी लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा माइंडफुल बनाने के लिए यू हैव टू फील द फीलिंग्स एग्जैक्टली दे आर। आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस भी नहीं करना है और एग्जैजरेट भी नहीं करना है, एंड यू हैव टू सी थिंग्स एज दे आर, और तब आप अपनी लाइफ को ज़्यादा माइंडफुल बना पाएंगे। और यहाँ से वो क्वेश्चन आया था कि हाउ कैन यू एक्चुअली सी थिंग्स एज दे आर। एंड मुझे लगता है कि जब आपको चीज़ों को वैसे ही देखना है जो जैसे वो एग्जैक्टली है, तो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके देखना पड़ेगा। जब आप किसी पिक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, जब आप किसी सिनेरियो में इन्वॉल्व होते हैं, तो आप साइड्स ले लेते हैं, आप किसी एक पोर्शन पे फोकस करके उसको ज़्यादा मैग्नीफाई करने की पावर रखते हैं। बट जब आप जूम आउट करते हैं और दूर से देखने की कोशिश करते हैं, तो यू कैन सी थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर। ये कहा भी जाता है कि कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, वी ऑल ऑपरेट इन कलर्स ऑफ ग्रे। तो हम ग्रेडियंट में कहीं ना कहीं मिड पे लाई करते हैं, बट क्योंकि हम साइड्स पे खड़े होते हैं तो हमें वो ब्लैक और वाइट दिखता है। तो आपको अगर देखना है एग्जैक्टली थिंग्स वैसे ही हैं, तो जब भी कोई सिनेरियो होता है जहाँ पे आपके एक्सट्रीम इमोशंस निकल के आते हैं, आपको एक्सट्रीम रिएक्शंस निकल के आते हैं, तो आपको अपने आप को डिस्टेंस करना सिनेरियो से। ट्राई एंड ऑब्जर्व इट एज अ थर्ड पर्सन, देखने की कोशिश कीजिए कि अगर यही सेम सिनेरियो किसी दूर के इंसान में हो रहा था, तो तब क्या मेरे ओपिनियंस डिफरेंट होते, क्या मैं दूसरे वाले का पर्सपेक्टिव देख पाता। और जैसे ही वो आप डिस्टेंस लेके आएंगे, तो यू विल बी एबल टू सी थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर।
कई बार ये भी होता है कि जब हम ये क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं कि हाउ कैन आई सी एज दे आर, तो हम कोशिश कर रहे हैं ये पूछने की कि मैं इन चीज़ों के बारे में पॉजिटिव कैसे रह सकता हूँ, एंड दैट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट। क्योंकि जब आप चीज़ को एज दे आर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, उसमें कोई ब्लैक और वाइट नहीं है जिसमें से आपको वाइट चूज करना है या ब्लैक चूज करना है। द होल पॉइंट इज़ टू स्टे न्यूट्रल अबाउट इट। और उसका तरीका ये है कि वेदर इट्स अबाउट अ पर्सन, या फिर वो कोई सिचुएशन है, या वो कोई बात है जो आपने कहीं पढ़ी है, उसके बारे में अगर आप एज इट इज़ रहना चाहते हैं, तो राइट वन पॉजिटिव थिंग अबाउट इट एंड वन एक्सट्रीमली नेगेटिव थिंग अबाउट इट। यानी कि कोई भी सिचुएशन में से कोई बहुत अच्छी बात निकाल के देखिए और उसी सिचुएशन का नुकसान क्या है ये भी निकाल के देखिए। सो यू विल हैव टू पर्सपेक्टिव्स ऑल एट द सेम टाइम, और इससे वो डिस्टेंस बन पाएगा जिससे आप दोनों पर्सपेक्टिव्स को देख पाएंगे, एंड देख पाएंगे कि none of those two things affect you directly, या अगर affect करती भी हैं तो at least you are aware of the other side of the coin as well.
सागर, मुझे इसमें एक और चीज़ लगती है कि जब भी कोई scenario होता है तो आप उसमें एक question हमेशा पूछ सकते हैं अपने आप से, and that question is what does this mean for me. जब आप ये question पूछने की कोशिश करते हो तो basically आप बोलना चाहते हैं कि ये एक particular scenario हुआ है, मेरे घर वालों ने यहाँ जाने से मना कर दिया, मेरे फ्रेंड ने मुझे डिच कर दिया, एंड वॉट डज दैट दिस मीन. कई बार उसका नेगेटिव आंसर आप लेके आ सकते हैं कि दिस मीन्स के पीपल डू नॉट केयर, आई एम नॉट वर्दी इनफ, या कई बार आप पॉजिटिव आंसर लेके आ सकते हैं कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो उनके पास एक्चुअली कोई काम होगा, या आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे नए फ्रेंड्स ढूंढने की ज़रूरत है, मेरा सर्कल बहुत छोटा है और उसमें अगर कोई बिजी हो जाता है तो मुझे बहुत हर्ट होता है, सो प्रॉबेबली आई शुड मीट मोर पीपल एंड मेक न्यू फ्रेंड्स. तो ये क्वेश्चन पूछना कि ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो है एंड व्हाट डज दिस सिनेरियो मीन फॉर मी, और इसको प्रॉपरली पॉजिटिव वे में आंसर करना काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है. ये इस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है कि अब आप उस सिनेरियो में से बेस्ट केस आउटकम अपने लिए निकाल के आ सकते हैं. जब हम माइंड को ये पावर दे देते हैं कि वो कॉन्शियसली ना सोच के सबकॉन्शियसली इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है या अनकॉन्शियसली इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करता है, तो मोर ऑफन देन नॉट वो सेल्फ इमेज कम करने का काम करता है. जब भी कुछ गलत होता है और हम अगर अपने ऊपर उसको ले लेते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज डिटोरिएट हो जाती है, हम अपने बारे में कम अच्छा सोचते हैं या दूसरों को ब्लेम करते हैं और उनको वो गलत सलत बोलने की कोशिश करते हैं. बट जब आप इससे पॉजिटिव आउटकम निकालने की कोशिश करते हैं तो आप एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आते हैं और अब ये चीज़ आपको इतना अफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि आपके पास एक सोल्यूशन है. सो विल बी एबल टू थिंक सी थिंग्स एज दे आर क्योंकि आपके पास सोल्यूशन और ये आप अटैच नहीं है इस पर्टिकुलर सिनेरियो से.
और आपको एक एक्शन मिल भी सकता है. कई बार ये भी हो सकता है कि कोई एक्शन ना लेना ही जरूरी है. जस्ट द एक्शन जो आपने किया कि आप बैठे और उस बारे में सोचा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्शन है. तो कई बार ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें आप लिटरली कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें से कुछ पॉजिटिव डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं या उसको सिचुएशन को अफेक्ट नहीं कर सकते हैं. मे बी कोई ऐसा डिसीजन होने वाला है घर पर जिसमें आपका कोई से नहीं है, आप चाहते हैं कि उसमें आपका से रहे, पर फॉर वट एवर रीजन अगर आपका उसमें से नहीं भी है तो भी उस सिचुएशन को एनालाइज करके अगर आप बैठते हो आपको पता पड़ता है अच्छा इन लोगों का पर्सपेक्टिव ये है, इन लोगों का पर्सपेक्टिव ये है, मुझे ये लगता है. एंड जैसे ये चीज़ एक्सप्रेस हो जाती है, जैसे ये चीज़ बाहर आ जाती है, तो उस सिचुएशन को आपने हैंडल कर लिया, एज इट इज़ देख लिया, अब आप उससे आगे बढ़ सकते हैं.
बिफोर हम ये एपिसोड एंड करें, हमने 10 क्वेश्चंस पे डिसाइड किया था कि हम आंसर करेंगे, बट वी टुक अ बोनस क्वेश्चन. और उस बोनस क्वेश्चन को लेने का कारण ये था कि वो क्वेश्चन इतना अच्छा था कि हम उसे मिस नहीं करना चाहते थे.
एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम रा कूल 10. ही वॉन्ट्स टू नो और शी वॉन्ट्स टू नो कि हाउ कैन दे डेवलप कंपैशन एंड एम्पथी टूवर्ड्स पीपल हु डिड रॉन्ग टू मी.
सागर, मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था और इसलिए मैंने इसे एज अ बोनस क्वेश्चन ऐड किया था हमारी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन में जिन्हें हम आंसर करने वाले थे. एंड कारण ये था कि आज के वर्ल्ड में जहाँ पे आप सिर्फ हेटरेट और इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, जहाँ पे आप दूसरों के लिए सिर्फ एंगर दिखाने की कोशिश करते हैं, देयर इज समवन आउट देयर हु इज एक्चुअली ट्राइंग टू बी एम्पैथेटिक टू पीपल जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है. एंड अगर आप करने की इस तरह की कोई अच्छी चीज़ कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये सोचना कि लाइफ फाइनाइट है आपको बहुत हेल्प करता है. डेथ एक कॉन्स्टेंट है जो हम सभी के लिए ट्रू है. और अगर आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब आपको लगता है कि सामने वाले ने जो भी किया था, मैंने जो भी किया, जो भी कुछ इंटर्न हुआ, दिस वुड ऑल एंड समडे. एंड बिकॉज सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है, नाउ द बेस्ट वे टू लिव इज़ कि आप अच्छे तरीके से रहें, लोगों के लिए अच्छा करें, अपने लिए अच्छा करें.
मुझे लगता है ये बहुत बड़ी अवेयरनेस इन द राइट डायरेक्शन है कि आप एटलीस्ट सोच रहे हैं कि आपको कंपैशन की ज़रूरत है. कई बार जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है तो ऑल वी कैन थिंक अबाउट इज कि कैसे हमारे साथ गलत हुआ है, हम इसका बदला कैसे चुका सकते हैं, एंड किसी दिन तो हम उनको दिखा देंगे कि हम सही थे एंड सो ऑन. तो अगर आप सिर्फ ये अवेयरनेस भी ला पा रहे हैं कि यू हैव टू बी मोर कंपैशनेट, इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन. पर यहाँ पे कभी भी ये लूज मत कीजिएगा कि आपको एक्चुअली किसी चीज़ के बारे में फील कैसा होता है. हम में से बहुत लोग थोड़े से पीपल प्लीजर टाइप के होते हैं, बल्कि मेरे को लगता है हम सभी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे लोगों को प्लीज करना चाहते हैं. तो हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचने के चक्कर में अपना खुद का फीलिंग भूल जाते हैं हमें कैसा लगा. तो जब भी आप किसी की तरफ कंपैशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको अपने आप को उनकी सिचुएशन में डाल के देखिए डेफिनेटली, और फिगर आउट कीजिए कि उनको एक्चुअली फील क्या रहेगा. बट एट द सेम टाइम बी वेरी अवेयर कि आपको कैसा लगा था. अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आया था तो दैट एंगर इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज दैट इज योर पर्सपेक्टिव. अगर सामने वाला आपके पर्सपेक्टिव से सोच रहा होता तो उस एंगर को वो आइडेंटिफाई करता. तो आप अपनी एंगर को आइडेंटिफाई कीजिए, सामने वाले के एंगर को आइडेंटिफाई कीजिए, एंड दैट विल हेल्प यू टू गेन बोथ पर्सपेक्टिव, ब्लैक वाइट, पॉजिटिव नेगेटिव, और आप ज़्यादा कंपैशन बिल्ड कर पाओगे.
इनफैक्ट अगर इमोशंस फील करना बुरा भी नहीं है, अगर आपको एंगर आया था उस मोमेंट पे जब आपके साथ गलत हुआ था या आपको बुरा लगा था, सो यू शुड एक्चुअली फील इट, मोर्न अबाउट इट, फील बैड अबाउट इट, बट लाइफ में मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है. यू कैन नॉट होल्ड द नेगेटिव इमोशंस एंड मूव अहेड इन लाइफ. तो आपको ये आइडेंटिफाई भी करना पड़ेगा कि हो सकता है जो भी जितना भी बुरा रहा हो, वो फीलिंग्स कितनी भी बुरी रही हो, अगर आप उनका बैगेज लेके चलते रहेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे. हम में से कई लोग लाइफ में बहुत कुछ अचीव इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा पुराना बैगेज हमें आगे ही नहीं बढ़ने देता. हमारा बैगेज के लोगों ने हमें क्या कहा था, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, उस बैगेज को लेके साथ चलना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम बढ़ नहीं पाते. सो जब आप इस तरह का कंपैशन बिल्ड करते हैं एक पूरी प्रॉपर मॉर्निंग प्रोसेस के बाद, तो आप एक्चुअली उस बैगेज को छोड़ रहे हैं एंड नाउ यू आर डूइंग योरसेल्फ अ फेवर. एंड दैट इज ऑल्सो अ पर्सपेक्टिव कि जब आप लोगों के बारे में इल फीलिंग्स छोड़ देते हैं तो आपके माइंड में बहुत सारी पॉजिटिव स्पेस ओपन अप हो जाती है. जब आप लोगों को माफ़ कर देते हैं, लोगों को फॉरगिवनेस दे देते हैं, तो आपका माइंड शांत हो जाता है. उनको तो अच्छा लगता ही है बट आपके माइंड में बहुत शांति आ जाती है एंड दैट इज़ वन फेवर यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ. सो दैट इज़ अनदर पर्सपेक्टिव जो आपको ध्यान में रखना चाहिए फॉर बिल्डिंग मोर कंपैशन एंड एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल जिन्होंने आपके साथ गलत किया.
एंड लुक एट वॉट यू क्रिटिसाइज इन पीपल. अगर आप लोगों को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ब्लैंकेट जजमेंट्स देते हैं कि ये तो ऐसा है, इसको ये करना चाहिए, तो वॉट दैट मीन्स इज कहीं ना कहीं आप अपने आप से सेम एरिया में डिससेटिस्फाइड होंगे. तो फॉरगिव देम फॉर डूइंग वॉट दे आर डूइंग एंड फॉरगिव योरसेल्फ फॉर नॉट डूइंग इनफ. क्योंकि हम लाइफ में बिजी हो जाते हैं, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमारा अटेंशन मांगती रहती है. हम लाइफ में जो करना चाहते थे फॉर वॉट एवर रीज़न हम कर नहीं पाते, और क्योंकि हम अपने आप से खुश नहीं होते, हम लोगों को भी क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने लाइफ में ये गलत किया. तो जब भी आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ट्राई टू सी कि ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ से आप अपने आप से ना खुश हैं और इसलिए वही चीज़ उनमें भी आपको पसंद नहीं आ रही. क्योंकि यू ऑलरेडी हैव योर पर्सपेक्टिव, तो ऑटोमेटिकली उनका पर्सपेक्टिव भी आपको लाइफ में समझ में आएगा. एंड जैसा कि चर्चिल ने कहा, यू कैन नॉट टेक बैगेज इन टू द फ्यूचर. आप जितना बैगेज लेके चलोगे आपकी आगे की जर्नी उतनी मुश्किल हो जाएगी. तो इवन फॉर योर ओन सेल्फिश रीजन लोगों को फॉरगिव करना शुरू कर दीजिए. हो सकता है उनकी लाइफ में कोई फर्क नहीं आए, हो सकता है आपकी फॉरगिवनेस उनको समझ में नहीं आए, हो सकता है वो फॉरगिवनेस आप उनको एक्चुअली बोल के दे भी नहीं पाए, पर अगर आप अपने माइंड में उनको फॉरगिव कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाएंगे.
विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड जिसमें हमने लोगों के Q&A लिए थे. हम जानना चाहेंगे कि आपको ये Q&A वाला एपिसोड कैसा लगा एंड ऑल्सो कि क्या आप चाहते हैं कि हम इस तरह के ज़्यादा Q&As करें. प्लीज़ शेयर इन द कमेंट्स बिलो कि आपको एपिसोड कैसा लगा एंड शुड वी डू दिस काइंड ऑफ एपिसोड्स इन फ्यूचर. आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी बता सकते हैं एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप एज वेल ऑन 888-9460-888. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड बी अ पार्ट इन देयर ग्रोथ जर्नी.
With that, we come to an end of this episode of the Good Talk Podcast. हमें आपके होस्ट, मैं हूँ सागर.
मैं हूँ चर्चिल.
Saying bye-bye.
Bye-bye.